वेदांत दर्शन के पहले टॉपिक विषय प्रवेश का, दूसरे टॉपिक का वेदों और उपनिषदों से वेदांत के विकास का ये आधा वर्णन है। प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में जो आजकल भी नैष्ठिक ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ करते हैं, वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक रूप में देखते हैं। मानवीय इतिहास में प्राय यही अद्वैत की प्रथम अनुभूति है। इस सूक्त का कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम विश्वस्तो वृत्वा तिष्ठिन सांग गूलम। पुरुष एवेदम सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उता मृत्युत्व शेषानो यदिन्नेना तिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादस्यो विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मृतम दिवि। अर्थात पुरुष के सहस्र मस्तक हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्र पैर हैं। वह समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे 10 अंगुल परे भी है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सो सब वही पुरुष है। वह अमृत का स्वामी है। जितने अन्न से पलने वाले जीव हैं सब में वही है। उसकी इतनी बड़ी महिमा थी और उससे भी बड़ा वह पुरुष था। संपूर्ण विश्व उसका एक पाद अथवा चतुर्थांश मात्र है। 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। उसके 1 पाद में सर्वभूत व्याप्त है और 3 पाद अमृत है जो द्यूलोक में है। यही चारों ओर चराचर विश्व में व्याप्त है। यहाँ पृथ्वी स्वर्गलोक ग्रह नक्षत्र देवता जड़ चेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए जो संपूर्ण विश्व में तो व्याप्त है ही उसके बाहर भी विद्यमान है। जो कुछ है या होगा सब उसी एक में सन्निहित है। इस मंत्र में केवल विश्व की एकता की ही कवित्वमय चित्र नहीं बल्कि उस परम पुरुष की भी झलक है जिसकी सत्ता विश्व के भीतर भी है और बाहर भी। ईश्वर सर्वव्यापी है किंतु उसकी सत्ता विश्व में ही सीमित नहीं है, वह उससे परे भी है। पाश्चात्य धर्म विज्ञान में पैनथिज्म जिसे हिंदी में निमित्तोपादानेश्वरवाद कह सकते हैं कहते हैं। पैनथिज्म अर्थात सर्वेश्वरवाद में ईश्वर जगत का उपादान कारण माना जाता है, परंतु पैनथिज्म में ईश्वर को उपादान और निमित्त दोनों माना जाता है। ईश्वर संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है, समस्त विश्व से भी वह बड़ा है क्योंकि समस्त विश्व उसके अधीन है। वैदिक ऋषि की दिव्य दृष्टि इतनी दूर तक पहुंच गई है कि इस एक ही मंत्र में उन्होंने अद्वैत जग दैक्यवाद तथा निमित्तोपादानेश्वरवाद के तत्व भर दिए हैं। वेद के नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है जिस मूल सत्ता से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, उसे न सत कहा जा सकता है न असत। यहाँ हमें पहले पहल उस निर्गुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं जिसे पाश्चात्य दर्शन में इंडिटर्मिनेट एब्सोल्यूट कहते हैं, जो सभी वस्तुओं का अंतस्तत्व है। मंत्र का प्रारंभ ऐसे होता है, नास दासिन नो सदा सित दानिम नास दज्जो नो व्योमा परोयत। अर्थात जो कुछ है सो पहले नहीं था, जो कुछ नहीं है सो भी नहीं था। न पृथ्वी थी न आकाश था न उसके परे स्वर्गलोक। मंत्र के अंत में ऐसा कहा गया है, इयम विशिष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो ऋग्वेद यदि वा न वेद। अर्थात यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसने इसे बनाया या नहीं बनाया, सबसे ऊंचे लोक में जो इसका अध्यक्ष है वह इसे जानता हो या वह भी नहीं जानता हो, मूल तत्व की सगुण ईश्वर के रूप में और निर्गुण ब्रह्म के रूप में जो कल्पनाएं की गई हैं उन दोनों में क्या संबंध है, इसे समझने के लिए हमें यह बात देखनी चाहिए कि सगुण ईश्वर की सत्ता भी विश्व में सीमित नहीं मानी गई है, अर्थात वह भी अनंत माने गए हैं। अतएव सगुण और निर्गुण से एक ही मूल तत्व के 2 रूप हैं। इस तरह यद्यपि ऋग्वेद में दर्शन के बहुतेरे महत्वपूर्ण तथ्य विद्यमान हैं तथापि वे काव्य के रूप में हैं। ऋषिगण किस प्रणाली से उन तथ्यों पर पहुँचे हैं या किन युक्तियों के आधार पर उन्हें मानते हैं इसका कहीं उल्लेख नहीं है। दर्शन का आधार मुख्यतः तर्क या युक्ति है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वेद वास्तविक अर्थ में दार्शनिक ग्रंथ नहीं कहे जा सकते। सबसे पहले उपनिषदों में दार्शनिक विचार मिलते हैं, उनमें आत्मा, ब्रह्म और जगत के बारे में विचार पाए जाते हैं, परंतु उनमें भी तर्क युक्ति कम ही देखने में आती है। कुछ उपनिषद तो छंदोबद्ध हैं और ऋग्वेद की तरह दार्शनिक तथ्यों पर कवित्वमय उद्गार हैं। कुछ गद्यमय उपनिषद भी ऐसे ही हैं। केवल थोड़े से ही उपनिषद ऐसे हैं जिनमें प्रश्नोत्तर के रूप में शंका समाधान करते करते किसी सिद्धांत पर पहुंचा गया है, परंतु कठोर तर्क प्रणाली का अभाव होते हुए भी उपनिषदों में एक असाधारण आकर्षक है। इसका कारण है कि उनमें विचारों की उच्चता, अनुभूत की गंभीरता, मनुष्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम की अनुप्रेरणा और भाषा की व्यंजना शक्ति ऐसी है जो प्रतीत होता है कि दिव्य दृष्टि से उन सत्यों के दर्शन हुए हों। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर उपनिषदों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा, संपूर्ण संसार में किसी ग्रंथ का अध्ययन उतना कल्याणकारक और उतना शांतिदायक नहीं जितना उपनिषदों का। यही मेरे जीवन की शांति रही है, यही मेरी मृत्यु की भी शांति रहेगी। उपनिषदों की कुछ समस्याएं हैं। ये मूल तत्व क्या है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें सब कुछ स्थित रहता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है? वह कौन सा सत्य है जिसे जानने से सभी कुछ ज्ञात हो जाता है? वह क्या है जिसके ज्ञान से अज्ञात ज्ञात हो जाता है? किस तत्व को जान लेने से अमरत्व प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? जैसा इन प्रश्नों से ही मालूम होता है, उपनिषद के रचयिताओं का दृढ़ विश्वास था कि एक सर्वव्यापी सत्ता है जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें वस्तुएं स्थित हैं, जिसमें सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं और इस तत्व के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। इस तत्व को कभी ब्रह्म, कभी आत्मा, कभी केवल सत कहा गया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। ऐत्रेय और बृहदारण्यक में कहा गया है कि पहले आदि में केवल वह आत्मा मात्र था। छांदोग्य में कहा गया है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। बृहदारण्यक फिर कहता है, आत्मा को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी तरह छांदोग्य कहता है, आदि में केवल सत था, दूसरा कुछ नहीं था। पुनः छांदोग्य और मुंडक में कहा गया है, यह सब कुछ ब्रह्म है। इन सब वाक्यों में ब्रह्म और आत्मा एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं कहीं तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। उपनिषदों में विचार का केंद्र वैदिक देवताओं से उत्तर कर मनुष्य आत्मा पर आ गया है। आत्मा का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है कि उस जिससे बाहरी उपाधियां छट जाएं और केवल असली तत्व रह जाए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और उनसे उत्पन्न होने वाले आनंद सबकी समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये सब आत्मा के क्षणभंगुर परिवर्तनशील रूप हैं, आत्मा के मूल तत्व नहीं। ये सब कोश या बाहरी आवरण मात्र हैं जिनके भीतर असली तत्व छिपा रहता है। अर्थात शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि वास्तविक आत्मा नहीं है, वे उसके बाह्य रूप मात्र हैं। सबका मूल आधार आत्म तत्व है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। किसी विषय का जो ज्ञान होता है वह उसी चैतन्य का एक सीमित प्रकाश है। शुद्ध चैतन्य किसी विषय की सीमा से बद्ध नहीं होने के कारण अनंत या सर्वव्यापी है, यही आत्मा है। सत्य अनंत और ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो ही आत्मा मनुष्य में है वही सभी भूतों में अथवा सर्वभूतात्मा है। अतएव आत्मा परमात्मा एक ही है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मा सभी वस्तुओं में निहित है और प्रकट रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु जो सूक्ष्मदर्शी है वे अपने सूक्ष्म बुद्धि से उसे देख लेते हैं। इस आत्मज्ञान या आत्मविद्या को सर्वश्रेष्ठ या पराविद्या कहा गया है और सभी विद्याएं अपराविद्या या न्यून कोटिक हैं। आत्मज्ञान का साधन है काम, क्रोध आदि वृत्तियों का दमन, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। जब तत्व ज्ञान के द्वारा संस्कारों का लोप हो जाता है तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह अत्यंत कठिन मार्ग है जिनमें इतना ज्ञान और दृढ़ संकल्प है कि प्रेय अथवा सुखद का परित्याग कर केवल श्रेय अथवा कल्याणप्रद का अनुसरण करें, उन्हीं को इसमें सफलता मिल सकती है। उपनिषदों का मत है कि कर्मकांड के द्वारा यज्ञादि कर्मों के संपादन से जीवन के परम पुरुषार्थ अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुंडकोपनिषद का कहना है कि ये कर्म क्षुद्र नौकाओं के समान हैं, जिनके द्वारा भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। जो अज्ञानी इन्हें ही सर्वोच्च समझकर इनका अवलंबन करते हैं, वे पुनः जरा मृत्यु के पास में बन जाते हैं। यज्ञ के द्वारा अधिक से अधिक स्वर्ग का सुख कुछ काल के लिए मिल सकता है। जब भोग के द्वारा पुण्य का क्षय हो जाता है, तब पुण्य मर्त्यलोक में जन्म होता है। हाँ, यज्ञ का महत्व तब बढ़ता है जब ऐसा हो जाए कि यजमान और यज्ञ देवता ये दोनों वस्तुतः एक हैं, केवल हवन और मंत्र पाठ की सांगोपांग विधियाँ वह आडंबर मात्र हैं जो तत्व ज्ञान से वंचित अज्ञानियों के लिए है। देवताओं के यज्ञ से कहीं बढ़कर आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान है। केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या के द्वारा ही पुनर्जन्म और तज्जन्य क्लेशों का अंत हो सकता है। जो अपने को शाश्वत ब्रह्म से अभिन्न समझ लेता है, वही अमृतत्व प्राप्त करता है। उपनिषदों में ब्रह्म का सत अथवा सब सत्ताओं का मूल और चित्त चैतन्य का आधार के साथ साथ आनंद अथवा सभी सुखों का मूल स्रोत माना गया है। समस्त सांसारिक आनंद उसी के क्षुद्र कण हैं, समस्त सांसारिक विषय उसी सत्ता के सीमित अंश हैं जो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वह ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव कर मुक्ति प्राप्त करता है। याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हैं कि आत्मा सभी आनंदों का मूल स्रोत है। इसका प्रमाण है कि आत्मा से बढ़कर किसी को और कुछ प्रिय नहीं होता। मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को आत्मी या आत्मवत जानकर ही प्रेम करता है। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं होती। पत्नी इसीलिए प्यारी नहीं होती कि वह पत्नी है। पति इसलिए प्यारा नहीं होता कि वह पति है। पुत्र इसलिए प्यारा नहीं होता कि वह पुत्र है। धन भी स्वतः धन के लिए नहीं चाहा जाता। ये सब आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। आत्मा अपने शुद्ध रूप में आनंदमय है। यह इस बात से भी सिद्ध होती है कि मनुष्य जब सुषुप्तावस्था में रहता है, तब शरीर इंद्रिय विषय तथा मन से अपना संबंध भूल जाता है और अपने प्रकृति रूप में आकर सुख दुख से परे शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान का मत है कि आत्मरक्षण की प्रवृत्ति सभी जीवों में स्वाभाविक है, परंतु प्राण रक्षा या जीवन से इतना प्रेम क्यों होता है? उपनिषदों का कहना है कि जीवन इसलिए इतना प्रिय है कि यह आनंदमय है। यदि जीवन में आनंद नहीं रहता तो इसे कौन चाहता? दैनिक जीवन में जो थोड़ा सा आनंद का अंश है, वह प्रत्यक्ष वह अत्यल्प और दुख से मिश्रित होने पर भी हमारे जीवित रहने की इच्छा को बनाए रखता है। आत्मा से दूर जाकर सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते रहने से अधिक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। विषयों को भोग करने की वासनाएं या बेड़ियां हमें जकड़कर सांसारिक बंधन में रखती हैं और जिनसे जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। वासनाओं के वेग हमें आत्मा से दूर ले जाते हैं और आकांक्षित विषयों के अनुरूप हमारे जीवन को निरूपित कर देते हैं। जितना ही हम विषय वासना का परित्याग करते हैं और आत्मा या ब्रह्म के साथ अपनी एकता देखते हैं, उतना ही अधिक हम परमानंद को प्राप्त करते हैं। आत्मा का दर्शन करना अनंत अमृत आनंदमय ब्रह्म में गिल जाना है। यही ब्रह्मानंद है। इसे प्राप्त कर लेने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। किसी वस्तु की कामना विशेष नहीं रहती। अतएव कठोपनिषद का कहना है कि जब मनुष्य का हृदय सर्वथा निष्काम या वासना रहित हो जाता है, तब वह इसी जीवन में लीन अमृत प्राप्त कर लेता है। यदि ब्रह्म या आत्मा ही समस्त जग का मूल तत्व है, तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्म और जगत का संबंध किस प्रकार का है? भिन्न भिन्न उपनिषदों में जो सृष्टि का वर्णन दिया गया है, वह ठीक एक सा नहीं है। परंतु इस विषय में प्रायः सभी सहमत हैं कि आत्मा अथवा ब्रह्म या सत ही जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही है। सृष्टि के आदि के विषय में अधिकांश उपनिषदों का मत कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले आदि आत्मा मात्र था, उसमें संकल्प हुआ, मैं एक से अनेक हूँ, मैं सृष्टि रचना करूँ। इसके बाद के सृष्टि क्रम को लेकर मतभेद है। कुछ उपनिषदों का कहना है कि आत्मा से पहले सूक्ष्मतम भूत आकाश की उत्पत्ति हुई, तदनंतर स्थूल भूत उत्पन्न हुए और उपनिषदों में और तरह के वर्णन पाए जाते हैं। इन वर्णनों से सृष्टि सत्य मालूम होती है और ईश्वर या परमात्मा वास्तविक सृष्टिकर्ता जान पड़ते हैं। परंतु उपनिषदों में बहुत से ऐसे वाक्य भी हैं जिनमें कहा गया है कि अनेकता यथार्थ नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, जो अनेक को वास्तविक समझता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह इह नानेव पश्यति। संसार के पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, उनकी एकता के प्रतिपादन में इस प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं। जिस प्रकार सोने से निर्मित कुंडलादि आभूषण वस्तुतः एक ही अथवा सोना मात्र है, अर्थात सबका मूल तत्व सोना एक ही है, केवल नाम रूप के भेद से जो केवल औपाधिक भेद हैं वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सभी विषयों का मूल तत्व एक है, उनमें केवल नाम रूप को भेद है। सांसारिक विषयों की अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं कहीं ब्रह्म अथवा आत्मा को सृष्टिकर्ता नहीं कहकर अवर्णनीय या अवांग मन सगोचर कहा गया है। वह उपासना का विषय भी नहीं हो सकता जो वाक से अतीत है, जैसा केनोपनिषद में कहा गया है ब्रह्म ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे है। जो वाक से अतीत है, जिसे वाक का स्वयं उद्गम हुआ है, वही ब्रह्म है। जिसकी उपासना होती है सो ब्रह्म नहीं। ईश्वर और जगत के संबंध में दोनों तरह के विचार देखने से स्वभावतः मन में उलझन पैदा हो गई है। क्या ईश्वर वस्तुतः सृष्टि करता है और अतएव सृष्टि सत्य है, अथवा वस्तुतः कोई सृष्टि नहीं होती और यह विषय संसार माया मिथ्या आभास मात्र है। क्या ईश्वर सगुण पुरुष है जिनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अथवा वह निर्गुण ब्रह्म है जो सर्वथा अज्ञेय है। उपनिषदों का वास्तविक विचार क्या है? पीछे के वेदांत ग्रंथ इन प्रश्नों का समाधान करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वादरायण के ब्रह्म सूत्र में श्रुतियों का वास्तविक अर्थ निर्धारित करने की और उनका सामंजस्य दिखलाने की चेष्टा की गई है, परंतु सूत्र इतने संक्षिप्त होते हैं कि उनके भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जा सकते हैं। पीछे के भाष्यकारों ने ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों के अर्थों की अपने अपने ढंग से विशद व्याख्या की है। इस प्रकार जो अनेक संप्रदाय बन गए उनमें शंकराचार्य का संप्रदाय सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। वेदांत से साधारण लोग अधिकतर यही अथवा शंकर का अद्वैतवाद समझते हैं। यहाँ तक कि विदेश के लोग भारतीय दर्शन से भी प्रायः अद्वैत वेदांत ही समझ लेते हैं। शंकर मत के बाद रामानुज का विशिष्टाद्वैत ही अधिक परिचित है। यही दोनों वेदांत के सुप्रसिद्ध संप्रदाय हैं।